नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द लेगो पावर फंक्शंस आइडिया बुक वॉल्यूम 2 कार्स एंड कॉन्ट्रैप्शंस योशिहितो इसोगावा की एक दृश्य आधारित निर्माण मार्गदर्शिका है। यह पारंपरिक लेगो निर्देश पुस्तिका नहीं बल्कि लेगो टेक्निक और पावर फंक्शंस पुर्जों से चलने वाले छोटे मॉडलों का विचार संग्रह है। 2015 में नो स्टार्च प्रेस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक कारों, टैंकों, क्रॉलरों, वॉकरों और अन्य गतिशील युक्तियों के माध्यम से यांत्रिक सिद्धांतों को दिखाती है। इसमें सैकड़ों मॉडल है जिनके लिए आवश्यक पुर्जों की सूची और कई कोणों से रंगीन तस्वीरें दी गई है। पाठक को क्रमवार निर्देशों का पालन करने के बजाय तस्वीरों को समझकर मॉडल की संरचना पुनर्निर्मित करनी होती है। पुस्तक का उद्देश्य किसी एक तैयार मशीन को बनवाना नहीं है। इसका केंद्र गियर, मोटर, गति संचरण, स्टीयरिंग, सस्पेंशन और प्रतिक्रिया आधारित हरकतों जैसे विचारों को छोटे जोड़ने योग्य निर्माण खंडों के रूप में प्रस्तुत करना है। इसलिए यह प्रयोग करने, पुर्जों के विकल्प खोजने और अपने वाहन या यंत्र विकसित करने की क्षमता पर बल देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, चित्रों के सहारे संरचना समझने की रिवर्स इंजीनियरिंग पद्धति इस पुस्तक की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका निर्देश देने का तरीका है। अधिकांश लेगो निर्माण पुस्तिकाएं हर चरण में एक या दो पुर्जे जोड़ने को कहती है, जबकि यहां मॉडल की अलग अलग कोणों से तस्वीरें और आवश्यक पुर्जों की सूची दी जाती है। पाठक को बीम, एक्सल, पिन, गियर और मोटर के संबंध स्वयं पहचानने पड़ते हैं। रंगों का विविध उपयोग भी इसी उद्देश्य से है, ताकि यह देखना आसान हो कि कौन सा पुर्जा किस स्थान पर जुड़ा है और किस दिशा में चलता है। यह पद्धति केवल मॉडल पूरा करने से अधिक मांगती है। बिल्डर को यह अनुमान लगाना पड़ता है कि शक्ति मोटर से किस एक्सल तक जाएगी, किस गियर का दांत किस गियर से जुड़ रहा है और ढांचा भार या घर्षण को कैसे संभालेगा। इस तरह निर्माण एक दृश्य पहेली और यांत्रिक विश्लेषण दोनों बन जाता है। इसका लाभ यह है कि पाठक तैयार डिजाइन की नकल तक सीमित नहीं रहता, वह किसी तंत्र को देखकर उसके काम करने के कारणों पर विचार करता है। इसकी सीमा भी स्पष्ट है, क्योंकि जटिल जोड़ या छिपी हुई परतें कुछ पाठकों के लिए कठिन हो सकती है। अतः यह शैली ऐसे बिल्डरों के लिए सबसे उपयोगी है जो धैर्य से निरीक्षण, परीक्षण और संशोधन करने को तैयार हो। दूसरा, गियर। शक्ति संचरण और गति परिवर्तन के व्यावहारिक आधार कार्स एंड कॉन्ट्रैप्शंस में वाहन केवल बाहरी रूप नहीं है, वे शक्ति को नियंत्रित गति में बदलने के उदाहरण हैं। पुस्तक के छोटे मॉडल गियर प्रणालियों, घूर्णन की दिशा बदलने, एक्सल व्यवस्था और मोटर से पहियों तक शक्ति पहुंचाने के तरीकों को सामने लाते हैं। गियर अनुपात का मूल सिद्धांत यहां प्रत्यक्ष दिखता है। छोटे गियर से बड़े गियर की ओर शक्ति जाने पर गति घट सकती है और खींचने की क्षमता बढ़ सकती है, जबकि उल्टी व्यवस्था अधिक गति के बदले कम बल दे सकती है। यह चुनाव वाहन के उपयोग से जुड़ा है। तेज चलने वाली कार, बाधा पार करने वाला क्रॉलर और धीमा लेकिन बलवान वॉकर एक ही मोटर के बावजूद अलग संचरण चाहते हैं। पुस्तक में दिशा परिवर्तन और चेंजओवर जैसे तंत्र भी इसीलिए महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि मोटर का लगातार घूमना आवश्यक नहीं कि मशीन की हर गति भी लगातार एक जैसी रहे। उचित गियर और स्विचिंग व्यवस्था से आगे पीछे चलना, अलग भागों को अलग ढंग से घुमाना या हरकत का क्रम बदलना संभव होता है। यह सामग्री इंजीनियरिंग की औपचारिक पाठ्यपुस्तक नहीं है, फिर भी हाथों से परीक्षण के माध्यम से टॉर्क, गति, प्रतिरोध और विश्वसनीयता के संबंध को ठोस रूप देती है। तीसरा, चार पहिया ड्राइव, डिफरेंशियल और सस्पेंशन से वाहन व्यवहार की समझ। पुस्तक का वाहन केंद्रित भाग यह दिखाता है कि चलने वाली लेगो कार बनाना केवल पहिए और मोटर लगाने का काम नहीं है। चार पहिया ड्राइव, डिफरेंशियल, स्टीयरिंग और सस्पेंशन जैसे तंत्र वाहन के वास्तविक व्यवहार को बदलते हैं। चार पहिया ड्राइव का विचार यह है कि शक्ति अधिक पहियों तक पहुंचे, जिससे सतह पर पकड़ और बाधा पार करने की संभावना बढ़े। लेकिन अधिक संचालित हिस्सों के साथ गियर व्यवस्था, घर्षण और संरेखण की समस्या भी बढ़ती है। डिफरेंशियल इस संदर्भ में विशेष रूप से उपयोगी अवधारणा है। मोड़ लेते समय बाहरी और भीतरी पहियों को अलग दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें अलग गति से घूमने देना वाहन को सहज मोड़ने में मदद करता है। सस्पेंशन मॉडल यह समझाते हैं कि पहियों को ढांचे से कठोरता से बांधने के बजाय कुछ स्वतंत्र गति देने पर असमान सतह पर संपर्क बेहतर रह सकता है। तस्वीरों के आधार पर इन व्यवस्थाओं को दोहराने की कोशिश करते हुए बिल्डर को यह भी समझ आता है कि अत्यधिक ढील, कमजोर फ्रेम या गलत एक्सल लंबाई से गाड़ी जाम हो सकती है। इस प्रकार पुस्तक वास्तविक वाहन सिद्धांतों को छोटे परीक्षण योग्य लेगो रूपों में बदलती है, बिना यह दावा किए कि ये पूर्ण आकार की इंजीनियरिंग प्रतिकृतियां हैं। चौथा टैंक क्रॉलर वॉकर और रोबोटिक इंचबम में वैकल्पिक गतियां। पुस्तक का दायरा पारंपरिक पहियेदार कारों से आगे जाता है। इसमें स्टीयर करने वाले टैंक क्रॉलर चलने वाले बॉट और रोबोटिक इंचबम जैसे मॉडल शामिल हैं। इन उदाहरणों का महत्व यह है कि वे गति को पहियों की सीधी घूर्णन क्रिया तक सीमित नहीं मानते। टैंक या क्रॉलर में बाएं और दाएं पक्ष की गति अलग होने पर दिशा बदली जा सकती है। यह स्टीयरिंग लिंक के बजाय शक्ति के वितरण से मोड़ने का तरीका है। वॉकर और इंचबम जैसे मॉडल एक घूर्णन मोटर को आगे पीछे ऊपर नीचे या क्रमिक पकड़ छोड़ वाली गति में बदलते हैं। यहाँ क्रैंक लिंक और गियर जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनका काम लगातार घूमने को उपयोगी चक्रीय चाल में रूपांतरित करना है। ऐसे मॉडल यह भी दिखाते हैं कि स्थिरता केवल भारी फ्रेम से नहीं आती। पैरों का क्रम जमीन से संपर्क गुरुत्व केंद्र और गति की लय सभी निर्णायक होते हैं। एक वॉकर के लिए बहुत तेज गति उपयोगी नहीं भी हो सकती यदि उसके पैर संतुलन खो दें। यही कारण है कि इन निर्माणों का शैक्षिक मूल्य केवल आकर्षक हरकत में नहीं बल्कि गति के विकल्पों की तुलना में है। पाठक समझ सकता है कि अलग परिवेश और कार्य के लिए अलग चाल तंत्र क्यों चुने जाते हैं। अंत में प्रेरणा संग्रह के रूप में पुस्तक की उपयोगिता और इसकी स्पष्ट सीमाएं। यह पुस्तक स्वयं को एक आइडिया बुक के रूप में स्थापित करती है, इसलिए इसका वास्तविक उपयोग तैयार परिणाम की गारंटी देने के बजाय निर्माण की भाषा सिखाने में है। प्रत्येक छोटा मॉडल किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक उपतंत्र बन सकता है, जैसे स्टीयरिंग व्यवस्था, ड्राइव बेस, दिशा बदलने वाला गियर तंत्र, सस्पेंशन इकाई या चलने की लिंक व्यवस्था। बिल्डर इन हिस्सों को जोड़कर अपना वाहन, खेल यंत्र या रोबोटिक मॉडल विकसित कर सकता है। यह दृष्टि विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास टेक्निक सेटों के पुर्जे तो है, लेकिन सेट की मूल डिजाइन के बाहर जाने के लिए यांत्रिक विचारों की कमी है। साथ ही पुस्तक यह मानकर चलती है कि पाठक के पास अनेक प्रकार के पावर फंक्शंस और टेक्निक पुर्जे उपलब्ध है। किसी विशेष मॉडल के लिए वैकल्पिक पुर्जे खोजने पड़ सकते हैं। क्रमवार निर्देश न होने के कारण शुरुआती बिल्डर कभी कभी किसी छिपे जोड़, गियर की दिशा या संरचनात्मक सहारे को समझने में अटक सकता है, इसलिए इसे पहली लेगो टेक्निक पुस्तक की जगह अगले चरण की संदर्भ पुस्तिका मानना अधिक उचित है। इसकी सीमा ही इसकी ताकत भी है। यह उत्तर देने के बजाय प्रश्न पैदा करती है और बिल्डर को परीक्षण करके अपना उत्तर खोजने देती है। निष्कर्ष में द लेगो पावर फंक्शंस आइडिया बुक वॉल्यूम 2 उन लेगो टेक्निक रुचि रखने वालों के लिए उपयुक्त है जो केवल सेट की आधिकारिक बनावट दोहराने से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसे ऐसे किशोर, वयस्क शौक या बिल्डर, अभिभावक और शिक्षक विशेष रूप से उपयोगी पाएंगे जिनके पास मोटर, गियर, बीम और कनेक्टर वाले पर्याप्त पुर्जे हैं तथा जो परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया से सहज है। बिल्कुल नए बिल्डर के लिए इसकी चित्र आधारित मॉडल चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि यह पुस्तक क्रमवार निर्माण निर्देश नहीं देती। फिर भी कुछ टेक्निक अनुभव के बाद यही चुनौती उपयोगी अभ्यास बनती है। पाठक को दृश्य निरीक्षण, स्थानिक समझ, यांत्रिक तर्क और समस्या समाधान का अभ्यास मिलता है। गियर अनुपात, शक्ति संचरण, डिफरेंशियल, सस्पेंशन और वैकल्पिक चालों को केवल परिभाषाओं में नहीं काम करते मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। समान श्रेणी की कई पुस्तकों से इसका अंतर इसकी संरचना में है। यह बड़े प्रदर्शन मॉडलों या एकल कठोर परियोजनाओं पर निर्भर नहीं करती। इसके बजाय यह सैकड़ों छोटे यांत्रिक विचारों का संग्रह देती है जिन्हें अलग अलग समझा, बदला और जोड़ा जा सकता है। रंगीन बहुकोणीय तस्वीरें और पुर्जों की सूचियां इसे संदर्भ सामग्री बनाती है जबकि खुला प्रारूप व्यक्तिगत प्रयोग की जगह छोड़ता है। यही कारण है कि यह पुस्तक निर्देशों की किताब से अधिक चलती मशीनों की डिजाइन शब्दावली सीखने का साधन बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं योशिहितो इसोगावा, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।